যে আনিল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর, যে আনিল জানিলো প্রেম ধনা করুণা প্রচুর, thank you. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे।
तो आज दो महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि है, एक है श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे हैं श्रील जगदीश पंडित। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमें ये गीत देते हैं जो हमने प्रवचन से पहले गाया है, जे अनिलो प्रेम धना करुणा चोर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो गीत है जिसमें वो भगवान के ऐसे जो महान भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हुए हैं, उनके विरह में इस गीत को गाते हैं। एक प्रकार से ये विरह गीत है, सॉन्ग ऑफ सेपरेशन, सपार्षद विरह जनित विलाप इस गीत का ओरिजिनल नाम है। सपार्षद भगवान के पार्षदों से नरोत्तम दास ठाकुर को विरह की अनुभूति हो रही थी और उस विरह सेपरेशन में वो क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और उस विलाप में वो रो रहे हैं। विलाप का मतलब ही है क्रंदन करना, रोना। किसके लिए रो रहे हैं, भगवान के ऐसे महान जो पार्षद भक्त हैं, शिव गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके संग आदि का लाभ उन्हें नहीं हुआ, पर्सनल एसोसिएशन उन्हें नहीं मिला, उसके लिए वो रो रहे हैं। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। क्यों रो रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे ऐसे महान महान भक्त इस जगत में हुए और सारे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय अनुयायी थे। तो इन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का खासियत क्या है कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। महाप्रभु का एक भक्त ही काफी है इस ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं कि मुझे ऐसे जो भक्त हैं, स्वरूप दामोदर है, सनातन है, रूप है, रघुनाथ आदि हैं, भट्ट, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, कविराज, कृष्णदास कविराज, गोरा नटरा, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे गौरांगेर गौरांग गुनेर निधि, ऐसे ही गुणों के सागर है सारे भक्त। तो मुझे उनका संग नहीं मिला जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूं, रो रहा हूं। तो हम रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, भक्तों के संग में परेशान है इसलिए रो रहे हैं। सोचते कि कब भक्तों के संग से, भक्त मेरे जीवन से कब दूर हो जाएगा, हम उसका चेहरा मोरा देखना नहीं चाहता, उसके उससे बात नहीं करना चाहता। हाँ, तो हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है, हम भी रो रहे हैं लेकिन भक्तों के संग से भागने के लिए, और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला। तो ये दयनीय स्थिति है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन का जो रहस्य है उसकी चर्चा कपिल देव अपनी माता देवोभूति को करते हुए कहते हैं, मोक्ष द्वारम अपावर्तम योषित संगी संघर्ष जो योषित संगी हैं, योषित योषित का मतलब है भोगी या फिर स्त्री। तो जो ऐसे योषित का संग रखता है और उसके प्रति आसक्त हो जाता है तो उसका ये निश्चित है। क्या निश्चित है? पतन निश्चित। लेकिन वहां देवोति को कपिल देव कहते हैं, जो आसक्ति इस जगत में हमें नीचे की ओर ले जाती है और वही आसक्ति यदि हम भगवान के भक्तों से रखते हैं, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा उस व्यक्ति के लिए खुल जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका मुझे संग नहीं मिला जिसके कारण मैं रो रहा। और वास्तव में ये बहुत बड़े प्रेम का लक्षण है भगवान के प्रति, क्योंकि भक्तों से प्रीति रखना मतलब किससे प्रीति रख रहे हैं? हम भगवान से प्रीति रख रहे हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने इस विरह गीत में वैष्णव का गुणगान करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने प्रचुर उनमें करुणा है और उस करुणा के कारण उन्होंने अपने साथ क्या लाया है, जे अनिलो प्रेम धन, प्रेम रूपी जो धन है वो वैष्णव अपने साथ लेकर घूमते हैं, कृष्ण प्रेम रूपी धन। तो ऐसे दो महान आचार्य हैं जिनका तिरुभाव है, उनका हम थोड़ा वर्णन करेंगे कुछ समय के लिए। एक तो है श्री जीव गोस्वामी और दूसरे हैं जगदीश पंडित। तो जीव गोस्वामी का अवतरण 1513 में हुआ था बंगाल में, और हम सब जानते हैं कि 6 गोस्वामियों में से सबसे जो छोटे थे आयु में वो जीव गोस्वामी थे, और उनके पारिवारिक जीवन का वर्णन स्वयं जीव गोस्वामी अपना जो ग्रंथ है लघु तोषणी, जो सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी लिखी है उसके ऊपर उनका टीका है, उस पर वो उसमें वो वर्णित करते हैं कि किस प्रकार से वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हैं, उनका जो फैमिली है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो दो प्रमुख सेनापति भक्त थे, एक थे सनातन गोस्वामी और दूसरे थे रूप गोस्वामी, तो इन दोनों के छोटे भाई थे अनुपम। वो अनुपम अनुपम भगवान राम के महान भक्त थे। अनुपम का जो उनको श्री वल्लभ भी कहा जाता है, और रूप गोस्वामी कहते थे कि अरे हम तो कृष्ण भक्त है, सदैव कृष्ण चर्चा करते, कृष्ण धाम में जाते, तुम भी कृष्ण कथा सुनने के लिए लालयत रहते हो, लेकिन तुम राम के प्रति बहुत आसक्त हो। तो ऐसे अनुपम के एक पुत्र हुए जिनका नाम जीव गोस्वामी पड़ा आगे चलकर। जय चे सनातन रूप वल्लभ सुंदर, तय चे श्री जीवेर की सौंदर्य मनोहार। तो भक्ति रत्नाकर में जीव गोस्वामी का वर्णन हमें मिलता है। जीव गोस्वामी के बारे में कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो चरित्र लिखे गए हैं, बायोग्राफीज हैं, उनमें हमें इतना अधिक जानने को नहीं मिलता, लेकिन दो महान आचार्य हैं, एक है नित्यानंद दास जिन्होंने ग्रंथ लिखा प्रेम विलास उसमें, और नरहरि चक्रवर्ती का भक्ति रत्नाकर नाम ग्रंथ में हमें जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ने को और सुनने को मिलता है। तो जो जीव गोस्वामी हैं, एक महापुरुष के लक्षणों को प्रकट करते हैं। ऐसे जीव गोस्वामी बहुत छोटे ही बालक थे तभी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन के ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव करने के लिए राम के लिए में जब चले गए थे नित्यानंद प्रभु आदि के साथ जब उनको वृंदावन जाना था, पहली वृंदावन यात्रा थी, तो उस समय रात के समय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु को आकर मिलते हैं। और जीव गोस्वामी बहुत छोटे से बालक थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण का स्पर्श उनको प्राप्त होता है। भक्ति रत्नाकर में लिखा गया है, श्री जीवादि संगोपने प्रभु के देखिला, कि छोटे से बालक थे उसी समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा था, दर्शन किया था, जो वो संन्यास लेने के बाद राम केले में आए थे। और बचपन से ही जीव गोस्वामी का जो अनुराग है वो कृष्ण बलराम के जो विग्रह है, और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के लिए सर्वाधिक था। नरहरि चक्रवर्ती अपने ग्रंथ में लिखते हैं, कृष्ण बलराम बिना किछु हुना भाई, एका क्यों दोहे लया निर्जने खेलाए, कि जीव गोस्वामी को कृष्ण बलराम के बिना कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। छोटे से विग्रह उनके पास हमेशा के लिए होते थे, क्योंकि रूप सनातन तो अपना घर आदि छोड़कर वृंदावन आ गए थे, और उनके जो बड़े छोटे भाई हैं अनुपम, क्योंकि रूप गोस्वामी जब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके भाई ये दोनों जाते जाते उनके जो भाई हैं वल्लभ, शिव गोस्वामी के जो पिता हैं, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था गंगा के किनारे। और जब ये छोटा सा बालक अभी अकेला था अपनी माँ के साथ जीव गोस्वामी, और सारे गांव के लोग राम केले के सोचते थे कि इस बालक में कितना वैराग्य है, ये जरूर इस गांव को छोड़कर वृंदावन जाने वाला है। और उनकी माँ हमेशा रूप गोस्वामी के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करती रहती थी, और जीव गोस्वामी उसको सुनकर बहुत अधिक उनके अंदर लौल्य जागृत हुआ था कि कब मैं वृंदावन चला जाऊं। बचपन से उनका आकर्षण कृष्ण के लिए था। शयन समय दोहे राखह वक्षते, और जो कृष्ण बलराम के विग्रह थे उनका वो ड्रेसिंग करते थे, उनके लिए माला आदि बनाते थे, भोगा ऑफर करते थे, और जब रात को सोते भी थे तो अपने छाती में लगाकर ये जीव गोस्वामी सोते थे। और जब उनको पता चला कि उनके पिता ने शरीर त्यागा है, तो उस समय जीव गोस्वामी के हृदय में बहुत अधिक वैराग्य का संचार हुआ, और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे जल्द ही वृंदावन जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनके संग मुझे निवास करना चाहिए। तो एक दिन जीव गोस्वामी जब राम केले में ही थे, अभी 20 साल की उनकी आयु थी, उससे भी थोड़े छोटे थे, तो एक दिन शाम के समय में वो निर्जन स्थान में बैठकर, हा कृष्ण, हे श्री राधिका, वृंदावन धाम, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ऐसे आवेश में आकर जोर जोर से रात को चिल्ला रहे थे। चिल्लाते चिल्लाते उनको नींद आ गई, और उसमें उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपने हजारों पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं बीच में, और जोरदार कीर्तन हो रहा है, और उस कीर्तन को सुनते हुए जीव गोस्वामी का निद्रा भंग हो जाता है, और वो ढूंढने लगते हैं महाप्रभु को, इधर उधर घूमते हैं घर में, और फिर से वो गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि उनके घर के जो कृष्ण बलराम हैं वो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो समझ गए कि जो कृष्ण बलराम है वो गौर निताय से अभिन्न है, और फिर उन्होंने निश्चय किया वृंदावन जाने का। लेकिन उनकी माँ उनको छोड़ नहीं रही थी कि नहीं नहीं आपको इधर ही रहना है, माँ को कितना भी बेटा बड़ा हो जाए छोटा लगता है, और क्या होता है वो अपने से दूर भेजना नहीं चाहती। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं फतेहबाद जाना चाहता हूँ, जो अपना पुराना घर आदि है, वहां का विजिट करना चाहता हूँ, एक नौकर को मेरे साथ दो। तो एक नौकर को लेकर नौका में बैठकर जीव गोस्वामी फतेहबाद जाने का केवल बहाना था, हमारे आचार्यों ने, कई सारे आचार्यों के जीवन चरित्र में देखते हैं कि वो बहाने बनाने में एक्सपर्ट है। अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? वृंदावन। तो इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं फतेहबाद, लेकिन फतेहबाद का बहाना बनाकर ये नवदीप चले गए। जाकर वो सबसे पहले वृंदावन जाने से पहले गौरांग महाप्रभु के लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहते थे, उनके भक्तों को मिलना चाहते थे। फिर जब वो पहुंचे तो वह नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास पंडित के आंगन में बैठे हुए थे। तो सबने देखा एक छोटा सा युवक आया है, तेजवान। तो नवदीप के कई लोग, इन्होंने पूछा कहाँ है नित्यानंद प्रभु? तो कि कोई नवदीप के लोग उनको ले गए। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में बैठे थे। जीव गोस्वामी ने जाकर अपना परिचय दिया कि मैं रूप सनातन का क्या हूँ, छोटे भाई का पुत्र हूँ। तो नित्यानंद प्रभु को बहुत अधिक आनंद हुआ। उन्होंने जैसे ही जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण जीव गोस्वामी के सर में रखे और उनको कहा कि आप चलो, मैं आपको क्या कराऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों का दर्शन कराऊंगा। तो वो वास्तव में पहली नवदीप परिक्रमा है। नवदीप की जो परिक्रमा है उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, एक वक्ता था और एक श्रोता था। तो नित्यानंद प्रभु ने और उसी परिक्रमा रूट को, नवदीप परिक्रमा का जो रूट है उसको हम फॉलो करते हैं। जीव गोस्वामी और किसने की थी? नित्यानंद प्रभु ने की थी। तो ऐसे जो जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु ने नवदीप की परिक्रमा की और शुरुआत उन्होंने की चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उस स्थान में जाकर, और वहां से उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया। तो वहां सची माता और विष्णुप्रिया ने उनका स्वागत किया। ईशान ठाकुर वहां थे जो उनके सेवक थे, उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन बनाए। सची माता विष्णुप्रिया को देखकर जीव गोस्वामी मूर्छित हो गए। तो पूरा कई दिनों का ये लंबा परिक्रमा रहा जीव गोस्वामी का नित्यानंद प्रभु के साथ। तो ऐसे जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के द्वारा पूरे नवदीप धाम में उन्होंने परिक्रमा किया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे कर प्रयाण, तुम्हार वंश प्रभु दिया छिन से स्थान। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे कर प्रयाण, उन्होंने कहा कि तुम बिना विलंब किए बिना क्या करो, ब्रज में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वंश को चैतन्य महाप्रभु ने वो देश दे दिया है। एक सेवा का स्थान गुरु प्रदान करते हैं अपने शिष्य को, उसको कहते हैं प्रभु दत्त देश। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो रूप सनातन है उनको वृंदावन, वेस्टर्न जोन है ना, कौन सा, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट है, तो ये जोन उनको प्रदान किया था प्रचार के लिए। और नित्यानंद प्रभु ने भी कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान, तुम्हारे वंश का स्थान तो वृंदावन है, वहां तुम जाओ और रूप सनातन का आश्रय तुम ग्रहण करो। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी, जो जीव गोस्वामी है, वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करते हैं। और जब जीव गोस्वामी उनको मिले थे नवदीप में, उन्होंने कहा कि आप ही वास्तव में मेरे स्वामी हैं और मैं आपका शाश्वत सेवक हूं, और आप मुझे केवल आपके चरणों की जो छाया है वो प्रदान कीजिए, और मैं आपके चरण छाया में निवास करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी कृपा से ही कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है और फिर कृष्ण प्रेम में सदैव डूबा रह सकता है। जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपके चरणों में समर्पित नहीं होता, आपकी कृपा की याचना नहीं करता, वो व्यक्ति 100 या 1000 जन्मों तक भी चैतन्य महाप्रभु का भजन करता रहे तो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना असंभव है, जब तक वो आपकी कृपा दृष्टि की अभिलाषा नहीं रखता। तो इस प्रकार से चैतन्य महा नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त करके जीव गोस्वामी वृंदावन के लिए निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, जाते जाते बनारस में रुको, बनारस में रुक के शास्त्रों का अध्ययन करो वृंदावन जाने से पहले। वहां मधुसूदन वाचस्पति हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, उनसे जाकर शास्त्र अध्ययन करो और फिर ब्रज के लिए चले जाओ। तो जीव गोस्वामी बनारस में आए, अपने कई साल उन्होंने बिताए, ऐसा वर्णन आता है कि बनारस में जीव गोस्वामी इतने अधिक प्रचलित या फेमस हो गए थे, पूरे बनारस में उनके जैसा शास्त्रों का विद्वान दूसरा कोई और नहीं था। तो फिर वो इतने मग्न हो गए स्टडीज में, वो भूल गए कि मुझे आगे कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु फिर से दोहराते उस बात को कि हे जीव तुम निकलो वृंदावन के लिए प्रयाण करो। तो जीव गोस्वामी वहां से वृंदावन आते हैं और जीव गोस्वामी इतने पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने सबसे अधिक श्लोकों की रचना की है, 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 4 लाख का मतलब आप सोच नहीं सकते, किसी में भी ऐसे कहा जाता है व्यासदेव के साथ उन्होंने कंपटीशन किया है। तो इतना 4 लाख में बहुत अधिक है, महाभारत में 1 लाख श्लोका है, भागवत में 18,000 श्लोका है। और जीव गोस्वामी का वर्णन आता है कि उनको किसी पेन और नोटबुक का आवश्यकता नहीं होता था कि अभी कुछ श्लोका तैयार कर रहा हूं लिख लेता हूं, नहीं, कई 100 श्लोका जो मन में वैसे तैयार कर लेते थे और जो टाइम मिलता था तब जाकर लिखते थे। इतने शक्तिशाली थे, उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा उस समय के जो गोस्वामी गण है वो किया करते थे, इवन रूप सनातन कृष्णदास कविराज आदि। तो ऐसे जीव गोस्वामी जब वृंदावन में आए तो उन्होंने सनातन उनका स्वागत किया बहुत सारे भक्तों ने, और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरे और उन्होंने कहा आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए योग्य नहीं हूं, तुम किससे दीक्षा लो, रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी ने भी तुरंत दीक्षा नहीं दिया, रूप गोस्वामी ने पहले उनको चेक किया, क्योंकि विद्वत्ता है तो उसमें नेचुरली क्या होता है, घमंड होता है, क्योंकि विद्वत्ता आदि है तो उसमें ये भावना नहीं आता, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। रामानुजाचार्य के एक शिष्य है दाशरथी, उनका वर्णन आता है, वो इतने विद्वान थे दाशरथी, वो रामानुजाचार्य के पास गए और उन्होंने कहा मुझे ये जो श्लोक है उसका मीनिंग सिखाइए। कौन सा श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो उन्होंने तो जब ये बात कर ही रहे थे तो रामानुजाचार्य के जो गुरु है महापूर्ण, उनकी जो बेटी है वो वहां आई, वो अतुले, उसका नाम अतुले था, वो वहां आए और वो पहले अपने पिता के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे जो घर वाले हैं, उनका शादी हुआ था, मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और बहुत अधिक घर में सेवाएं होती थी। तो उस समय इन्होंने कहा कि ये मेरे लिए तो बहुत कठिन है। तो उसके ससुर आदि ने कहा कि तुम्हारे बाप के पास जाओ और तुम क्या करो, वहां कोई नौकर ला के रखो, यहाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा ये सारा काम आदि है। तो एक दिन वो यहाँ आ जाती है अपने पिता के यहाँ महापूर्ण के वहां। महापूर्ण ने कहा तुम रामानुजाचार्य के पास जाओ, जो मेरे शिष्य हैं वो व्यवस्था कर देंगे। तो ये गई और ये एक तो स्टूडेंट आया था श्लोक का अर्थ पूछने के लिए, सबसे अधिक विद्वान था, और उसी समय यह भी पहुंची कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो रामानुजाचार्य ने उनको कहा दाशरथी तुम क्या करो, इस अतुले के घर जाओ और वहां कुकिंग और पानी भरने का काम शुरू करो। तो ये दाशरथी गया, अभी गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए निकल पड़े। दाशरथी करने लगे, कुकिंग करना रोज, पानी इतने दूर से सर के ऊपर ढोके लाना। उस गांव में एक दूसरा विद्वान आया जो भागवत कथा कर रहा था, कथा करते करते मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा था। तो उस समय यह भी क्योंकि सब पूरा गांव जानता था ये तो नौकर है, कुक है, तो बाहर रूप से सबको ऐसे ही दिख रहा था, क्योंकि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता। तो यहाँ दासमती ने बीच में लेक्चर के बीच में वो बताने लगे कि जो प्रवक्ता है प्रवचन दे रहा था उनको कहा कि आप इसमें गलती है उसमें गलती है इस प्रकार से है। तो लेक्चरर जो था वो चिल्लाने लगा, भागवत कथा वाचक तुम क्या जानते हो, तुम तो कुकिंग करना जानते हो, पानी ढोना जानते हो, हाँ अतुले के वहां तुम एक नौकर हो। तो फिर देखा दाशरथी की विद्वत्तापूर्ण बातें, तो फिर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबको पता था दाशरथी नाम का एक महान विद्वान शिष्य है रामानुजाचार्य का। तो उनको रामानुजाचार्य के जो शिष्य है दाशरथी को ये श्लोक का अर्थ रिवील हो गया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। इतने बड़ा विद्वान था, सर्वधर्मान परित्यज का मतलब ये है कि सारे अपनी विद्वत्ता आदि को त्याग करके गुरु के आदेशों का, अपने आप को मूर्ख समझते हुए गुरु के आदेशों का पालन करना। तो फिर जब देखा कि ये जीव गोस्वामी बहुत अधिक विद्वान है, तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अभी ना तुम पहले सेवाओं में लगो, इनको मैनुअल सर्विसेज दी, झाड़ू लगाना पूरे एरिया को झाई रहते थे, कुटिया में पानी लेके आना, और जो पूजा आदि करते थे रूप गोस्वामी उसके लिए फूल तोड़ना, बहुत सारी चीजें, और भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे उनके लिए कुकिंग करना होता था तो कुकिंग करने में लगाते थे, बर्तन धोने में लगाते थे, श्लोका सर्च करने में लगाते थे, अपने चरणों का मसाज करवाने के लिए लगाते थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेनियल सर्विसेज में लगाया काफी लंबे समय तक। और रूप गोस्वामी ने एक गुण को देखा जीव गोस्वामी के, और क्या गुण था, सेल्फलेस सर्विस। तो सेल्फलेस सेवा की जो भावना है वो जीव गोस्वामी के अंदर जब रूप गोस्वामी ने देखी तब कहा कि तुम वास्तव में अभी दीक्षा लेने के योग्य बन गए हो। तो फिर जी रूप गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान की जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी नाना प्रकार की जो सेवाएं हैं वो रूप गोस्वामी की करने लगे। तो एक दिन जब ये सारी सेवाएं हो रही थी तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लिख रहे थे, तो उस समय वल्लभाचार्य आते हैं मिलने, रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को मिलने आए थे, बल्कि ये पहले दो बार मिल चुके थे रूप गोस्वामी, एक बार जगन्नाथपुरी में और दूसरा इलाहाबाद में उनके घर में गए थे प्रसाद के लिए। जब वल्लभाचार्य आए और कहा कि आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, उन्होंने कहा मैं भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहा हूं। तो ये जीव गोस्वामी उनको फैन कर रहे थे, किसको, रूप गोस्वामी को। अभी सीनियर बात कर रहे थे, जूनियर अपना सेवा कर रहे हैं, बीच में बात नहीं करनी है। तो वो समय जब इन दोनों का चर्चा हो रहा था तो उनका कुछ भक्ति रसामृत सिंधु का कुछ पेजेस उन्होंने ले और पढ़ने लगे, और उन्होंने कहा कुछ अंश को पढ़कर वो बोले कि जैसे ही आपका ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा, संशोधन करूंगा, इसका एडिटिंग मैं करूंगा। तो अभी ये सुना जीव गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी मन में सोचने लगे मेरे जो गुरु शास्त्र मास्टर है सब विद्वत्ता के, और ये आकर बीच में कहते कि मैं एडिट करूंगा रूप गोस्वामी के ग्रंथ में। अभी बीच बोल नहीं सकते थे गुरु के सामने। तो फिर वहां से वल्लभाचार्य यमुना में स्नान के लिए गए, तो जीव गोस्वामी ने अपना फैन रखा उनके पीछे निकले, और उस समय नदी के किनारे बातें करने लगे, और उन्होंने कहा क्या चीज है, आप क्या समझते हैं रूप गोस्वामी को, जो इतना इतना सामर्थ्य रखते हैं, विद्वत्ता रखते हैं, और आप क्या उनके ग्रंथ में दोष दिखाओगे, क्या चीज एडिट करोगे। तो उन्होंने कहा एक श्लोक उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में, क्या लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सखत सखर्षान कथा अभ्युभयो भवेत, कि उन्होंने ये लिखा है कि जो भुक्ति मुक्ति है वो पिशाचिनी के समान है। ये पिशाचिनी वर्ड सही नहीं यूज किया उन्होंने, इसका मैं एडिटिंग करना चाहता हूं, लेकिन रूप जीव गोस्वामी ने कहा आप समझ नहीं रहे हो श्लोक को ठीक से। हाँ, उन्होंने कहा है यदि भगवत भक्ति में ये जो भावना रहेगी, जीव गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने भुक्ति मुक्ति को पिशाचनी नहीं बोला है, बल्कि भुक्ति मुक्ति की जो स्प्रहा है, स्प्रहा में भावना इच्छा है कामना है, वो कैसे है पिशाचनी के समान है। और जब ये रहती है तो जो भक्ति रूपी सूर्य है वो उदित नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, जब तक ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा भगवत भक्त के हृदय में रहेगी तब तक वो भगवत भक्ति में भी अशांत ही बना रहेगा। कृष्ण भक्त क्या है निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने डांटा उनको, वल्लभाचार्य को, और वल्लभाचार्य देखा कि ये जो छोटा सा बच्चा है यंग है लेकिन बड़ा विद्वत्ता रखता है। फिर ये वापस गए रूप गोस्वामी के पास और उनको कहने लगे ये जो जो लड़का फैंक कर रहा था ना चामर कर रहा था या कि मुझे मिला था यमुना के किनारे बहुत विद्वत्ता धारण करता है और वो कौन है? वो कहते मेरे जो छोटा भाई है अनुपम का पुत्र है जीव गोस्वामी और वो बनारस आदि में शिक्षा उसने प्राप्त की है, मेरे ग्रंथों का संशोधन आदि वही करता है। तो फिर उनको पता चला कि इनको डांट लगाई है, तो रूप गोस्वामी ने को बोला वल्लभाचार्य ने, तो जीव गोस्वामी आए वापस, रूप गोस्वामी को प्रणाम किया और रूप गोस्वामी डांटने लगे उनको। क्या कहा उन्होंने, मोर कृपा करी भट्ट आयला मोर पाशे मोर हित लागी ग्रंथ शुद्धि। भक्त हमेशा इस प्रकार से देखता है कि कोई भक्त मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे पास आया। उन्होंने कहा ये जो वल्लभाचार्य है ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे पास आए थे, मोर हित लागी ग्रंथ शुद्धि ब कहिला ये अति अल्प बाध्य सहिते नारिला। और तुम में इतना सहन शक्ति नहीं है, इतना तुम उत्तेजित हो गए हो। उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं ग्रंथ का शोधन करने जा रहा हूं करूंगा तो उसको तुम सहन नहीं कर पाए। ताहे करह गमान वृंदावन। उन्होंने कहा तुमने तो वैराग्य लिया है लेकिन इन मैच्योर अवस्था में क्या कहेंगे उसको, अपरिपक्व अवस्था में तुमने वैराग्य धारण किया है और इसी कारण से तुम क्या हो मन स्थिर हैले आसीबा वृंदावन, तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है और वृंदावन में रहने की योग्यता क्या है मन स्थिर होना चाहिए। तुम्हें इतना क्रोध भरा पड़ा है, तुम अपने क्रोध पर भी क्रोध करना नहीं सीखे हो, तुम वृंदावन रहने की योग्य नहीं हो, मेरे आंखों की दृष्टि से निकल जाओ। रूप गोस्वामी ने कहा आप सोचो आध्यात्मिक गुरु और शिष्य को कहे मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता बल्कि शिष्य का एकमात्र धन श्री गुरु के चरण है। जीव गोस्वामी रोने लगते हैं और इससे संबंधित और एक घटना हुई थी। उसी समय एक बहुत बड़े विद्वान रूप नारायण सरस्वती आए थे जो दिग्विजयी हैं, भारत में सब जगह घूमते थे डिबेट करके बड़े बड़े विद्वान उनको हराते थे और वो कहते थे मुझे जय पत्र दे दो, जय पत्र में लिख के दे दो कि रूप नारायण सरस्वती ने मुझे हरा दिया है। इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि नॉर्थ में वृंदावन में रूप सनातन जैसा कोई विद्वान नहीं है, इनको हराऊंगा तो पूरे भारत वर्ष में मैं सबसे अधिक विद्वान कहलाऊंगा। हाँ, ये दुर्बुद्धि उसको कहां से आई, वृंदावन चला गया रूप नारायण सरस्वती और वहां गया तो रूप गोस्वामी हाँ, इन्होंने बड़े बड़े त्यक्त्वा तोरणम अशेष मंडलपति, ये मंडलपति थे हाँ, स्वामी थे बड़े बड़े देशों के, इन्होंने सब चीजों को त्याग कर ये आए थे ब्रज में केवल भगवत सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मग्न थे ग्रंथों का लेखन कार्य करना, लीला स्थलियों को खोजना, तो उस समय ये आया और इन्होंने अप्रोच किया रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने कहा, रूप सनातन ने कहा, हमें तो सब डिबेट नहीं करना है, बताइए क्या लिख दूं लेटर में। तो उन्होंने लिख दिया, लेटर साइन करके दे दिया दिग्विजय को, क्योंकि जो वैष्णव है इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। रूप गोस्वामी ने कहा कि ये समय की बर्बादी है, इससे क्या मिलेगा। तो फिर इसको इतना गर्व हो गया, फिर बाद में किसी वैष्णव से पता चला कि ये दो ही नहीं और एक छोटा भक्त है जीव गोस्वामी, वो बहुत विद्वान है ब्रज में और एक है। तो उन्होंने जाते निकल ही रहे थे बाहर, सोचा जीव गोस्वामी को भी मिल लेता हूँ, उनको भी हरा के चलता हूँ, अभी आया हूँ। जैसे हमारे भक्ति देवी 10 गीता चला गया, एक गीता है, ये बांट के चला ही जाता हूँ। तो फिर रूप गोस्वामी जो जीव गोस्वामी को ये रूप नारायण सरस्वती गया और डिबेट करने लगा। यमुना के किनारे 7 दिन तक इनका डिबेट चला, हाँ शास्त्रार्थ चला, और फिर 8वें दिन रूप नारायण सरस्वती को नतमस्तक होना पड़ा। किनके चरणों में? जीव गोस्वामी के चरणों में, हरा दिया। और बड़ा छाती तान के ये रूप गोस्वामी के पास आए। रूप गोस्वामी ने वही क्लास लगाई। रूप गोस्वामी ने कहा, हाँ तुम वही चीज कही थी उन्होंने, मतलब ये अलग अलग जगह वर्णन आता है कि इन दो घटनाओं के कारण रूप गोस्वामी ने डांटा कि तुम योग्य नहीं हो ब्रज में निवास करने के, तुम मेरे सामने से चले जाओ। जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया रूप गोस्वामी के चरणों में और वहां से वो चल पड़े और जाकर यमुना मथुरा के पास नंद घाट में वो रहने लगे, छोटा सा कुटिया बनाकर। इवन कुछ नहीं था तो जो मगरमच्छ का होल होता था उसमें जाके रहने लगे जीव गोस्वामी, और लगभग 1-2 साल वहां रहने लगे। और रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को पता नहीं है कि कहां चले गया ये जीव। और वहां रहते हुए 1-1.5 साल उन्होंने व्रत लिया था, मौन, बिल्कुल साइलेंस, मौन व्रत, और केवल भगवत भजन करते थे और ग्रंथों का लेखन करते थे। उन्होंने वहां ही षड संदर्भ, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 6 बुक्स हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उसका उन्होंने लेखन किया था। और सनातन गोस्वामी रोज मधुकरी करने के लिए जाया करते थे, भिक्षा मांगने के लिए, तो एक गांव में गए, भिक्षा मांग ही रहे थे। ओ माँ भिक्षा दे दो, भिक्षा दे ही। तो वो जो ब्रजवासी माता जी थी बूढ़ी, वो अपना लेप कर रही थी दीवार को गोबर का, कहते शांत रहो ना, आ ही रही हो, कितना चिल्लाते हो, इंतजार करो, तुमसे तो हमारा बाबा अच्छा है जो मिट्टी या पाप राख खाकर जीवित है। तो सोचा कौन सा बाबा है इनका, सनातन गोस्वामी ने सोचा। तो फिर सनात देखा कि अरे उस बाबा के लिए छोटी बूढ़ी माता जी का इतना प्रेम है। तो कहा कि कौन है ये माँ, कौन है? तो उन्होंने बताया कि वो वहां नदी के किनारे, पता चला जीव गोस्वामी है। देखा उनके वैराग्य आदि को, सनातन गोस्वामी बहुत प्रभावित हुए। और फिर एक दिन उसी दिन आ गए रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी कुछ डिवोटीज कहते लेक्चर दे रहे थे, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा के ऊपर ये टॉपिक था। तो सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हो। रूप गोस्वामी ने कहा कौन सी शिक्षा का पालन नहीं करता। कहते 3 तो महाप्रभु की शिक्षा है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, उसमें से 1 शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हो, और वो क्या है? जीवे दया। तो जीवे दया का मतलब उनको याद आया, किसके ऊपर दया नहीं की मैंने? जीव गोस्वामी के ऊपर। तब पहले तो उन्होंने पूछा कि आप वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, वो अभी पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने कहा अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये जीव होता ना, जीव जीव दशा में होता तो जल्दी पूर्ण हो जाता। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि जीव गोस्वामी की स्थिति, और फिर जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी लाते हैं और इनके चरणों में फिर से समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी वापस आते हैं और शास्त्र में वर्णन आता है कि किस प्रकार से एक दिन रूप गोस्वामी को भगवान राधा दामोदर स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जीव गोस्वामी को मेरे विग्रह समर्पित करो। तो राधा दामोदर विग्रह ओरिजिनली बहुत छोटे हैं, जयपुर में है ओरिजिनल विग्रह, इतने हैं छोटे से, और हम यहाँ दर्शन करते हो इतने बड़े हैं। तो वो जो राधा दामोदर विग्रह है जो रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाए उस विग्रह को, और एक दिन जीव गोस्वामी को समर्पित किया, और उस विग्रह से जीव गोस्वामी का बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम था। स्वप्नादेश श्री रूप श्री राधा दामोदर स्वहस्ते निर्माण करे दिला श्री जीवेरे, अपने हाथ से निर्माण करके उनको दिया था। तो ये जो राधा दामोदर है उनको नींद नहीं आती थी जब तक वो जीव गोस्वामी के हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करते थे भोगा, और ये कभी कभी जीव गोस्वामी को जब वो ड्रेस पहन लेते थे राधा दामोदर तो उनको बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? एक दिन बाजाय बांशी हासिया हासिया श्री जीव कहे मोरे देख आसिया। तो एक दिन राधा दामोदर भावावेश में आ गए, भगवान बांसी बजाते बजाते हंसते हंसते कह रहे हे जीव आओ आओ मुझे देखो। जैसे आप नए कपड़े पहनते हो तो आप किसी को देखो प्रभु जी मैं कैसे लग रहा हूं, या बच्चे कहते घर में, तो वैसे ही भगवान का जो प्रीति अपने भक्तों से इतना अधिक है, क्योंकि भगवान किन से आनंद प्राप्त करते? भक्तों से। भक्त नहीं देखेंगे तो भगवान को वैसे आनंद कहाँ मिलेगा। तो राधा दामोदर अल्टर में बैठते थे और कभी कभी बांसुरी बजाकर जीव गोस्वामी को पुकारते थे, आओ आओ जीव जीव इधर आओ, और क्या करो मुझे देखो मुझे निहारो। कैशोर वयस वेश भुवन मोहन देखते है श्री जीव हिला अचेतन। और जीव गोस्वामी दौड़ के हुए दौड़ते आते थे और क्या हो जाता था देखकर वो अचेतन हो जाते थे। चेतन पाया हिया आनंद उथले भासे दिदल दुटी नयने रजले। और भगवान को देखकर उनके आंखों से अश्रुपात होता था और कभी कभी उनको कहते थे हे जीव अब मुझे बहुत भूख लगी है आओ और मुझे कुछ खिलाओ। तो जीव गोस्वामी तुरंत अपने पाकशाला से कुछ ले जाते थे और उनको पर्सनली खिलाते थे। तो ऐसे जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में विलास मंजरी है। तो ऐसे जीव गोस्वामी छह गोस्वामी पांच गोस्वामियों के प्रकट होने के बाद या रूप सनातन के बाद वही गौड़िया संप्रदाय के महान आचार्य बने और इतने अधिक फेमस हो गए। वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि इस संप्रदाय में किसी ने सिस्टमैटिकली प्रचार शुरू किया है तो वो जीव गोस्वामी थे। सिस्टमैटिकली प्रीचिंग का जो शुरुआत है वो जीव गोस्वामी ने की है। तो जीव गोस्वामी का इतना अधिक प्रभाव था कि इवन उस समय अकबर बादशाह ने जब जीव गोस्वामी वृंदावन के ग्लोरीज को सुना तो अकबर वृंदावन में मिलने आया। किन से? जीव गोस्वामी से। और अकबर ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया या स्पॉन्सर किए, जो धन है पत्थर आदि हैं। और जीव गोस्वामी को मिले 1570 में और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में सारे वैष्णवों के हस्तलिखित ग्रंथों का लाइब्रेरी स्पॉन्सर किया था अकबर ने। अकबर बहुत अधिक प्रभावित थे, विशेष रूप से मदन मोहन मंदिर, गोविंद गोपीनाथ जुगल किशोर इन टेंपल के लिए उन्होंने बहुत अधिक सपोर्ट किया था। तो ऐसे जीव गोस्वामी का वर्णन हमें भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है और उनका जो टेंपल है वृंदावन में हम देखते हैं वो ब्रज या पूरे वृंदावन का क्या है, हब है, केंद्र बिंदु है। सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर है और श्रील प्रभुपाद ने इन दो गोस्वामी का आश्रय लिया वास्तव में, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उन दोनों से राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने रहे 6 साल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर रहे। वहां से उन्होंने योजना बनाई अमेरिका जाने की और वहां से पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में ही लिखा था। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी का वर्णन प्राप्त होता है और पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम है उन्होंने बनाया और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो योजना है वो उन्होंने शुरू किया। तो जीव गोस्वामी के पास गौड़िया संप्रदाय का जो सेकंड जनरेशन है, गोस्वामी के पास सेकंड जनरेशन था नरोत्तम दास ठाकुर, दुखी कृष्णदास जिनका नाम है श्यामानंद पंडित, और श्रीनिवास आचार्य। तो इन तीनों को जीव गोस्वामी ने शिक्षा दी, शास्त्रों में पारंगत कराया भगवत भक्ति में 3 स्टूडेंट्स को, और इन तीनों को ही जीव गोस्वामी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंगाल और उड़ीसा भेजा था। तो जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है इस संप्रदाय में और उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनका वर्णन करना असंभव है। कुछ ग्रंथों का नाम पढ़ता हूं, हरे नामामृत व्याकरण जो बहुत अधिक फेमस है, संस्कृत सीखने के लिए जो डिफिकल्ट व्याकरण है ये इन्होंने एक लिखा हरे नामामृत व्याकरण, जिसमें हर जो शब्द है शिक्षा है वो भगवान नाम से शुरू होती है या धातु आदि है, उनके नाम भी कृष्ण नाम से दिए गए हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उनमें से है सत्र मल्लिका, धातु संग्रह, कृष्णार्चन दीपिका, गोपाल विरुदावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री कल्प ध्रुम भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, बृहद संगीत टीका, भक्ति रसामृत शेष, लोचन रोचनी टीका, योग सारस्तव, गायत्री भाष्य, गोपाल चंपू और 7 संदर्भ है, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। तो ये श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज का बाखान करते हैं संदर्भ। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी का जो समाधि है वो राधा दामोदर मंदिर में है। जीव गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनकी कृपा के लिए, ताकि वो हमें शक्ति प्रदान करें, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु की जो आंदोलन है हम उसमें कुछ योगदान दे सके। श्री जीव गोस्वामी पाद की दूसरे आचार्य हैं जगदीश पंडित। तो जगदीश पंडित के बारे में चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में हमें पढ़ने को मिलता है। कृष्णदास कविराज जगदीश पंडित का वर्णन करते हुए कहते हैं, जगदीश पंडित हाय जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जैन वर्षा घान। तो जगदीश पंडित जगत को पावन करने वाले हैं और कृष्ण प्रेम की वर्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे जगदीश पंडित कृष्ण लीला में जो यज्ञ पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणाज हैं, यज्ञ ब्राह्मणाज उनकी पत्नियां हैं, अपरे यज्ञ पत्नियों श्री जगदीश हिरण्य को एकादशामी और अन्न प्रार्थयित्वा ग्रसत प्रभु। तो भगवान कृष्ण लीला में भी ब्राह्मण पत्नियों का अन्न उन्होंने मांग के खाया था और उसी प्रकार से गौर लीला में भी जगदीश पंडित के घर का अन्न भगवान ने मांग के खाया। ऑफरिंग लगने का वेट नहीं किया कि घंटे लेके आएंगे ऑफरिंग लगाएंगे, नहीं, जो प्रेमी भक्त हैं उनका भोजन भगवान स्वयं मांग के ग्रहण करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सखा थे, एक साथ गुवाहाटी में इनका जन्म हुआ था, प्राग ज्योतिषपुर नाम था पूर्व महाभारत का उस स्थान का आसाम में, और उनके जो पिता थे कमलाक्ष भट्ट थे, माता पिता ने शरीर त्यागने के बाद ये अपनी पत्नी जिसका नाम था दुखिनी और हिरण्य, उनके जो भाई थे उनको लेकर मायापुर आके जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही अपना घर बना लिया। और चैतन्य महाप्रभु के जो पिता थे उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था मित्रवत, और जब रहने लगे तो निमाय तो बहुत छोटे से बालक थे, तो जैसे महाप्रभु ने जन्म लिया था नवद्वीप में छोटे से बालक के रूप में थे निमाय, तो ये ट्रिकी थे, ट्रिक योजना बनाते थे क्या कि महाप्रभु छोटे से आयु में वो रोते रहते थे और बंद कैसे होते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते थे रोने का ताकि क्या हो जाए सब लोग हरे नाम का उच्चारण करें। तो आसपास की स्त्रियां को पता था इस बच्चे को शांत करना है तो क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये मंत्र भी काम नहीं किया। एक दिन महाप्रभु निमाय रोते जा रहा है, सब लोग चांद कर रहे रुकने रहे, तो जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, बालक बताओ क्यों रो रहे हो, क्या चीज आपको शांत कर सकती है। तो इन्होंने कहा, ये जो जगदीश पंडित है ना, उस दिन एकादशी था, उनके घर के जो विग्रह है उनके लिए आज 56 से ज्यादा भोग बने हैं और मैं उस भोग को ग्रहण करना चाहता हूं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, छोटा सा बच्चा घर से बाहर नहीं गया, उसको कैसे पता उनके किचन में क्या बना है। तो फिर उन्होंने कहा, आपको जाना होगा उनके घर से, मेरे लिए प्रसाद लाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ मिश्र वैसे गए देखने, सही है कि नहीं, जगन्नाथ मिश्र गए तो वहां एकादशी के दिन इतने सारे व्यंजन बने थे भगवान के लिए, भोग नैवेद्य बने थे। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र है निमाय, वो इसकी मांग कर रहा है। और जगन्नाथ मिश्र ने कहा, एकादशी में तो अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन जगदीश पंडित ने कहा, ये आपका जो बालक है वो खा सकता है, वो लिटिल गोपाल है, छोटे से गोपाल है। तो जगदीश पंडित ने बहुत सारा अन्न दे दिया, बहुत सारा प्रसाद दे दिया और लाया निमाय पंडित के सामने रखा, और निमाय पंडित ने उसको सब ग्रहण किया। तो इस प्रकार से जगदीश पंडित से विशेष प्रेम था, और आगे चलकर जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो ये जगदीश पंडित भी जब जगन्नाथ पुरी वगैरह जाते थे तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके रथ यात्रा आदि पूरे भाव एक्सटेसी में आ जाते थे, भाव में नृत्य आदि करते थे। और एक समय जगदीश पंडित जब जगन्नाथ पुरी पहुंचे तो वहां नव कलेवर हो रहा था, नव कलेवर, कलेवर में शरीर, तो जगन्नाथ के विग्रह को चेंज किया जाता है, नया डेटिस रखा जाता है टेम्पल में, पुराने डेटी को समाधि दिया जाता है वहां, समाधिस्थ विग्रह जिसको कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के विग्रह को चेंज किया था और दूसरे विग्रह को समाधि देने वाले थे अंदर, या तो जलाते हैं या जमीन के अंदर डालते पुराने विग्रह को। तो वो जगन्नाथ जी वहां राजा के स्वप्न में आया और कहा कि ये जो मेरा डिवोटी है बंगाल से जगदीश पंडित, में उसके साथ जाना चाहता हूं। कौन से विग्रह, जो चेंज किए हुए समाधि स्थ विग्रह जो है, उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। अभी वहां के जगन्नाथ जी कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, 7 फुट हैं, कितने 7 फुट, और ये जगदीश पंडित अभी उनको बंगाल ले जाना चाह रहे थे नवदीप मायापुर में, कैसे ले जाएंगे। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हल्का हो जाऊंगा और मुझे ले चलो, लेकिन जहां रखोगे ना उधर ही रह जाऊंगा, जैसे गोवर्धन के साथ हुआ था पुलस्त्य मुनि। गोवर्धन ने कहा, मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन जहां रखोगे मैं उधर से उठूंगा नहीं। तो इन्होंने कहा, मैं अकेला कैसे ले जाऊंगा, 2-3 ब्राह्मण को ले चलता हूं, कभी वो उठाएंगे कभी मैं उठाऊंगा। तो जगन्नाथ के विग्रह को लेकर ये लोग आते हैं, छकादह एक स्थान है बंगाल में, पहले उसका नाम प्रद्युम्न नगर था, कृष्ण बुक में पढ़ेंगे प्रद्युम्न और शमरासुर का युद्ध है, वहां शमरासुर असुर को मारा था प्रद्युम्न ने। तो छकादह एक स्थान है, वहां पहुंचे और इन ब्राह्मणों को कहा, आप ना जगन्नाथ जी को थोड़ा सा उठा के रखिए, मैं यमुना में थोड़ा स्नान करके आता हूं। स्नान करने के लिए गई, ब्राह्मणों ने जगन्नाथ जी को उठाया था, इतने भारी हो गए जगन्नाथ जी, पूरा ओडिशा से आने तक हल्के थे, लेकिन अभी चकादा गांव में आए इतने भारी हो गए, इन्होंने छोड़ दिया नीचे। और वहां जब भी आए जगदीश पंडित, देखा उठ ही नहीं रहे जगन्नाथ जी, फिर सोचा कि जगन्नाथ जी इसी गांव में निवास करना चाहते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका देखा, इतना प्रेम जगन्नाथ जी के लिए आदि, तो चैतन्य महाप्रभु भी उन डीटीज को देखने के लिए नित्यानंद प्रभु के साथ गए वहां जगदीश पंडित के विलेज में। और जगदीश पंडित और उनकी जो पत्नी थी दुखिनी, उनका प्रेम चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत था। जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके घर से बाहर निकलने लगे तो ये दोनों जोर जोर से रोने लगे, बहुत दुखी होने लगे। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर एक छोटा जो विग्रह है गौर गोपाल, छोटा विग्रह अपना खुद दे दिया प्रकट करके कि ये विग्रह मुझसे अभिन्न है। और फिर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जगदीश पंडित की ये जो प्रसादन लीला है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में बहुत विशद रूप से वर्णन की है। तो ये दो आचार्यों का हमें स्मरण करें, कृपा की याचना करें, क्योंकि तिरुभाव और आविर्भाव के दिन इन वैष्णव आचार्यों को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, और उस दिन वो बहुत अधिक करुणा प्रचुर क्या हो जाते हैं, करुणा इतनी उनके हृदय में होती है, निम्न से निम्न अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी उनको अप्रोच करता है तो उनके ऊपर वो अपना कृपा का वर्षाव करते हैं। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जीव गोस्वामी का स्मरण करने की, उनकी कृपा की भीख मांगने की, और जगदीश पंडित की भी। हरे कृष्णा। श्री जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, पतित पावन श्री प्रभुपाद के।